70% पूर्ण टीकाकरण के साथ जल्द खत्म होगा विक्टोरिया का लॉकडाउन। राज्य खुलने के बाद भी न्यू साउथ वेल्स में स्थानीय कोरोना मामले नियंत्रण में, और आज होगी यूएई में T20 विश्व कप की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया में टीके के लिए योग्य आबादी के 70% टीकाकरण के बाद मेलबर्न का 10 सप्ताह से चल रहा लॉकडाउन गुरुवार यानी कि 21 अक्टूबर की रात को खत्म हो जाएगा। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 1838 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस दौरान राज्य में 7 मौतें भी दर्ज की गई हैं। टीकाकरण के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 65.5% लोगों को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विक्टोरिया के फिर से खुलने के रोडमैप में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें मेलबर्न की यात्रा सीमा को खत्म करना और घर में एक दिन में 10 मेहमानों के आने की अनुमति शामिल है। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने घोषणा की है कि सभी छात्रों के लिए स्कूल लॉकडाउन खत्म होने के एक सप्ताह पहले शुरू हो जाएंगे और पूरी तरह से टीकाकरण वाले परिवारों के लिए चाइल्ड केयर एक बार फिर खोले जाएंगे।
I can't tell you how proud I am of our state, the resilience, the courage, the compassion and the conviction that Victorians have shown to get this job done is quite amazing. Not only am I proud, but I'm deeply grateful. But I would just say this, there's still a little way to go. We've got to get that 70 number to 80.
इस बीच मेलबर्न के विवादास्पद कर्फ्यू को भी खत्म कर दिया जाएगा और अब बाहरी समारोहों में 15 लोगों तक को बुलाने की अनुमति होगी। इसी के साथ क्षेत्रीय विक्टोरिया के लिए नियम परिवर्तन भी हैं। विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेड सटन का कहना है कि टीकाकरण में तेजी से वृद्धि के कारण लोग अस्पतालों में अब कम संख्या में आ रहे हैं।
It's really been an extraordinary story. We've had huge uptick in our vaccination. We've gone from 0 to 35% coverage in over 150 days, and the 35% to the 70% mark is going to happen in much less than that. It's really extraordinary how we're shooting up the global rankings in terms of our vaccination coverage.
New South Wales ke premier Dominic Perrottet ne puri tarah se टीकाकरण वाले अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए होटल संगरोध को समाप्त करने के अपने निर्णय को एक बार फिर सही ठहराया है। इसी के साथ राज्य प्रीमियर की आगे चलकर होम क्वारंटीन को भी समाप्त करने की योजना है। प्रीमियर पैरोटे ने कहा कि न्यू साउथ वेल्स सभी विदेशों से आ रहे लोगों का स्वागत करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रीमियर डोमिनिक पैरोटे की योजना को खारिज कर दिया, जिन्होंने कहा कि सरकार पहले नागरिकों और स्थायी निवासियों के लिए सीमा खोलने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत के बारे में पूछे जाने पर न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ने कहा कि फेडरल सरकार के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही है।
I've had numerous conversations with the Prime Minister, numerous conversations in relation to moving to this point, and the federal government is supportive. Now, obviously, it's a matter for them in terms of how they stage it, but we certainly want to move it, and we want to move fast because if we can open up safely. In this way, we'll get the New South Wales economy back on top. And why is that important? Because it provides opportunity and prosperity for everyone across New South Wales.
कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों को देखते हुए प्रीमियर डोमिनिक पैरोटे ने आज सुबह न्यू साउथ वेल्स के लिए $130 million के मानसिक स्वास्थ्य सहायता पैकेज की घोषणा की। इस बीच अपने 80% टीकाकरण के लक्ष्य तक पहुंचने के एक दिन बाद न्यू साउथ वेल्स में कोरोना के 301 स्थानीय मामले और 10 मौतें दर्ज की गई। फेडरल सरकार ने पुष्टि की है कि न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के साथ ऑस्ट्रेलिया संगरोध मुक्त यात्रा फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पॉल केली ने कहा कि न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया दोनों ने इस बुधवार से यात्राओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेवल बबल इस साल की शुरुआत में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कोविड के प्रकोप के बाद रुका हुआ था। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में कोरोना के 33 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 24 ज्ञात प्रकोपों से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में दैनिक कोरोना मामलों के 50 तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी सकते में थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मामले 50 से काफी नीचे हैं, जो कि अधिकारियों के लिए एक राहत की खबर है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरन कॉलमैन का कहना है कि कैनबरा निवासियों को अभी भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी के अस्पतालों में इस वक्त 16 कोविड-19 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 9 गहन देखभाल में हैं। अब खबरें भारत से। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन में किसानों ने रोहतक में महापंचायत की, जहां प्रदेश भर से किसान पहुंचे। इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा,
पंजाब के लोग जो भी उसमें तय करेंगे कोई, क्योंकि अगर मुआवजा देंगे तो ये मन ना जाएगा कि किसानों की इसकी सहमति थी। किसान से तो हमारा कोई मतलब था ही नहीं, उनसे कोई चीज़ होगी फिर भी मानवता के नाते क्या चीज़ होगी, क्योंकि स्टेज के पास में वो था, वो बिल्कुल उस पर बहुत लोग आ रहे हैं आंदोलन में। वो जो भी घटना हुई हो, किसी एक आदमी ने घटना करी और वही पकड़ा गया।
केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप रॉस आइलैंड का नाम बदल दिया है। आपको बता दें कि अब ये द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अपने प्राणों की आहुति देने वालों को इतिहास में जगह मिलनी चाहिए।
सालों तक देश के अंदर आजादी के कई जाने माने नेताओं को उनके योगदान को छोटा करने का भी प्रयास किया गया, मगर अब समय आ गया है कि सभी को इतिहास में उचित स्थान मिलना चाहिए। जिनका योगदान था, जिनका बलिदान था, जिन्होंने जीवन नौछावर करे, उनको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, गौरवपूर्ण जगह मिलनी चाहिए। और इसीलिए इस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष के नाम पर रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, सरदार पटेल के साथ भी कुछ इसी प्रकार का अन्याय हुआ। आज हम जिस भारतीय संघ को, गणराज्य को देख रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता है 350 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने का काम अगर सरदार साहब 1-1.5 साल के कम अंतराल में न करते तो भारत का अस्तित्व होता क्या?
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 55.66 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 74 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। T20 वर्ल्ड कप की आज से UAE और ओमान में शुरुआत होने जा रही है। हालांकि इस टूर्नामेंट के लीग स्टेज के मुकाबले 23 अक्टूबर से खेले जाएंगे, लेकिन आज यानी कि 17 अक्टूबर से क्वालिफायर राउंड की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि आज 2 क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें से टॉप 8 टीमें पहले से ही सुपर 12 में क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि 8 टीमें क्वालिफायर खेल रही हैं, जिनमें से 4 टीमें सुपर 12 में जगह बनाएंगी। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां कल बढ़िया धूप रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां आसमान बादलों से घिरा रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल बढ़िया धूप रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल बारिश हो सकती है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल आंशिक बादल रहेंगे, यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं, बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।